श्री क्षमा सागर जी महाराज के मंगल वाणी का लाभ लें इससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक इसे अवश्य सुने। जिन बच्चों ने मुनि श्री 160 क्षमा सागर जी महाराज के सानिध्य में एबीसी ऑफ जैनिज्म का अध्ययन किया है, आज हम उन सभी बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। एबीसी ऑफ जैनिज्म की तीनों टेस्ट में सम्मिलित होने वाले वे सभी बच्चे अपने अभिभावकों सहित सादर आमंत्रित हैं, अनिवार्य रूप से वे पधारें। बच्चों के सम्मान का यह आयोजन इसी मंदिर प्रांगण में परम पूज्य 160 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज द्वारा दोपहर के जो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम लिया जाता है उसके ठीक उपरांत, प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम के पश्चात ठीक 4 बजे यह सम्मान समारोह बच्चों का आयोजित किया जाएगा। इसमें वे सभी बच्चे जिन्होंने एबीसी ऑफ जैनिज्म की क्लास परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अटेंड की है वे सभी सादर आमंत्रित हैं। और जिन्होंने तीनों टेस्टें दी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिन्होंने तीनों टेस्टें दी वे सभी बच्चे अपने अभिभावकों सहित दोपहर को ठीक 4 बजे परम पूज्य महाराज श्री के प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम के पश्चात इस सम्मान समारोह में सादर आमंत्रित हैं। इसी तरह आगामी 23 और 24 तारीख को हिंदुस्तान के कोने कोने से कई प्रकांड और उत्कृष्ट विद्वानों का यहां पर समागम होने जा रहा है, और विद्वत सम्मान समारोह श्रुत पंचमी पर्व के अंतर्गत आयोजित होने वाले विद्वत सम्मान समारोह में हमें इन सभी विद्वानों के व्याख्यानों का तो लाभ प्राप्त होगा ही, साथ ही परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज एवं भव्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का भी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो 23-24 मई के श्रुत पंचमी पर्व के अंतर्गत आयोजित होने वाले विद्वत सम्मान समारोह के कार्यक्रम में भी आप सभी टाइम टेबल और विस्तृत कार्यक्रम यहां सूचना पट पर और मंदिरों के सूचना पट पर लगा हुआ है, उसके अनुसार अवश्य पधारें। अब हम सभी परम पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भई अरहंता दिमह जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है। हमारे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने के बहुत सारे विचार हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि इतने सारे विचारों के होते हुए भी हम अपने जीवन को जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा नहीं बना पाते? उसमें एक कारण यह है कि हमारे अपने विचारों की उतनी दृढ़ता नहीं होती कि वो हमारे आचरण को भी प्रभावित कर सके। क्षण भर के लिए कोई विचार आता है, उसे हम अपने आचरण में परिवर्तित करें इसके पहले ही वो विचार विलुप्त हो जाता है, उसकी जगह पर कोई और दूसरा विचार आ जाता है। और ऐसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के बहुत सारे विचार अपने पास मौजूद होते हुए भी और उनसे कोई विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने दी है कि हम चाहें तो अपने विचारों में दृढ़ता और स्थिरता लाकर उन्हें अपने आचरण में परिवर्तित कर सकते हैं। विचारों की इस निरंतर प्रक्रिया का नाम अनुप्रेक्षा है या कि भावना है। ये जो विचारों की निरंतरता है वो हमारे ज्ञान और अनुभव इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। अभी तो होता यह है कि हमारा ज्ञान कुछ और होता है, हमारे जीवन की अनुभूतियां कुछ और होती हैं, और उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य हम स्थापित नहीं कर पाते हैं। तब अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, एक ऐसा ज्ञान जो अनुभूति से उत्पन्न हुआ हो या कि एक ऐसा ज्ञान जो अनुभूति बन जाता हो, वो हमें इस विचार की निरंतर प्रक्रिया से प्राप्त होता है। और इसलिए ये विचार की निरंतर प्रक्रिया या अनुप्रेक्षा या कि भावना हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में, हमारे आचरण को व्यवस्थित और अनुशासित करने में कारण बन जाती है। ये होता कैसे होगा? हम कोई विचार अगर अपने भीतर निरंतर करते रहते हैं तो वो विचार हैमरिंग का काम करता है, वो हमारे ऊपर निरंतर चोट करता है। जैसे कि किसी भी स्थान पर कोई निरंतर चोट करे तो यदि वो स्थान आपको तोड़ना है तो वो धीरे धीरे कमजोर होकर के एक न एक दिन वो टूट जाएगा। हमारे भीतर जो खोटे संस्कार हैं, अगर हम उन पर इसी तरह निरंतर अच्छे विचारों की हैमरिंग करें, चोट करें, तो धीरे धीरे वे विचार कमजोर पड़ते हैं और एक दिन वे विचार टूट भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वो जो श्रेष्ठ विचार हैं जिनको कि हम निरंतर स्मरण में ला रहे हैं, जिनको कि हम निरंतर विचार की प्रक्रिया में शामिल कर चुके हैं, वे विचार धीरे धीरे अपने आप ही दृढ़ होते चले जाते हैं। वो टेम्परिंग की प्रक्रिया है। बुरे विचारों को तोड़ने के लिए और अच्छे विचारों को समृद्ध सुदृढ़ बनाने के लिए यह प्रक्रिया है। वस्तुपरक चिंतन की प्रक्रिया है जो कि हमारे भीतर वैराग को उत्पन्न भी कर सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोहे की छड़ को अगर अग्नि में तपाया जाए और फिर उसे ठंडा कर दिया जाए, उसे फिर गर्म किया जाए और फिर ठंडा किया जाए, अगर ये प्रक्रिया लगातार की जाए तो लोहा फौलाद बन जाता है। लोहे का अपना जो स्ट्रक्चर है, लोहे के अपने जो तत्व हैं, वे ज्यों के त्यों रहे आते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता परिवर्तित हो जाती है। पानी को भाप बनाकर फिर ठंडा करके पानी बनाया जाए, फिर उसे भाप बनाया जाए, फिर ठंडा करके पानी बनाया जाए, इस तरह 100 दफे अगर भाप बनाकर फिर पानी बनाया जाए, तो यह प्रक्रिया पानी के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेगी, वह तो H2O ही रहेगा, लेकिन 100 दफे इस प्रक्रिया से गुजरकर जो पानी प्राप्त होगा उसकी गुणवत्ता कुछ अलग ही होगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यही हमारे वस्तु परक निरंतर जो विचार की प्रक्रिया है उसके द्वारा हमारे भीतर गुणवत्ता में परिवर्तन आना शुरू होता है। चिंतन और चिंता में थोड़ा सा ही फर्क है। यह निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है और जिस चीज से हम निरंतर ग्रसित रहते हैं वो चिंता है, वो हमारे विषय कषाय की पूर्ति और उनके अभाव में होने वाली प्रक्रिया है। जिन चीजों को हम अपने सुख सुविधा के लिए चाहते हैं उनके अभाव में पुनः उनका संयोग कैसे हो, इस बात का जो चिंतन चलता रहता है, और संयोग हो जाने पर वे कभी वियोग को प्राप्त ना हो, इस प्रकार का जो संरक्षण का चिंतन निरंतर चलता रहता है वह तो चिंता कहलाती है, वह चिंतन नहीं कहलाता। लेकिन जिससे हमारे अपने जीवन में संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का ज्ञान होता है और उस संसार शरीर भोगों की वास्तविकता को जान करके संसार शरीर और भोगों के प्रति जो हमारे मन में उदासीनता आनी शुरू होती है वो चिंतन की प्रक्रिया है। उदासीनता भी ऐसी नहीं है कि कल तक किसी मित्र के गुणों को मैं जानता था और उसके गुणों को देखकर मुझे उसके प्रति बहुत प्रेम भाव था, लेकिन आज जब उसके दुर्गुण मालूम पड़े तो मैं उसके प्रति उदासीन हो गया हूं, यह उदासीनता द्वेषजनक है। इसलिए सावधानी रखना कि ऐसी उदासीनता का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है, उसका नाम वैराग्य नहीं है। जब हम किसी वस्तु को उसके गुण दोषों के साथ जानकर न हर्ष करते हैं, न विषाद करते हैं, न उसमें स्टरेस की कल्पना करते हैं, वह स्थिति है उदासीनता या कि वैराग्य की। इसलिए यह अनुप्रेक्षा का फल है वैराग या कि उदासीनता। वैराग उपावन माई चितवो अनुप्रेक्षा भाई। और कौन इसका चिंतन करते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगनते वैरागी। यहां पर कोई सौभाग्यशाली है तो कह रहे हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी, जिन्होंने महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है वे बड़ भागी हैं। और भव भोगन तें बैरागी, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त हो गए वे भी अपने वैराग्य की सुरक्षा के लिए, वे भी अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए, वे भी और अधिक वैराग्य पाने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और जिन्हें इस संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का भाव है वे भी इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से अपने भीतर वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। माता जैसे अपने पुत्र को उत्पन्न करती है ऐसे ही ये भावनाएं या अनुप्रेक्षाएं हमारे भीतर वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। अनुप्रेक्षा हमारी बहुत अच्छी सलाहकार भी है। जैसे राजा के दरबार में मंत्रीगण उन्हें मंत्रणा देते हैं, उन्हें ठीक ठीक सलाह देते हैं, तब वे राजकाज में सक्षम हो पाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख के अवसर, लाभ हानि जय पराजय के अवसर, उन सब के बीच में यह 12 भावनाओं का या अनुप्रेक्षा का अभ्यास वह हमें ऐसे अवसर पर सलाह देता है। इतना अवश्य है कि हम उससे सलाह ठीक समय पर ले पाते हैं या नहीं। अगर हमारी वह चिंतन की प्रक्रिया सही है और निरंतर है तो हमारे अनचाहे भी और अवसर आने पर वो हमारे लिए एक अच्छा सलाहकार बन सकती है। अभी तक तो हम लोगों ने 12 भावनाओं को एक पाठ की तरह दोहराने का क्रम बना रखा है। आचार्य महाराज कहते हैं कि हम लोग 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करते हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब छत्रपति तो है नहीं तो पंख ही छत्र सही, अब छत्र लगाने वाला तो कोई है नहीं कि तीन छत्र लगा जाए तीन लोग के नाथ बने, तो यही सही है। ये हम सबके लिए एक तरह का हमारे लिए संकेत है कि हम 12 भावनाओं का चिंतन जिस तरह करते हैं वह एक पाठ करने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उससे लाभ हमें लेना है अगर तो हमें उस प्रक्रिया में थोड़ा सा और अधिक संशोधन करना होगा, थोड़ा सा हमें उस प्रक्रिया को पुनर्विचार करके अपने जीवन में फिर उस भावना को भाने की तैयारी करनी पड़ेगी। वो सलाहकार कैसे बन सकती है और सलाहकार करता क्या है? जैसे एक उदाहरण अपन ले लें, सुबह अपन उठें और उठते ही साथ और कोई मित्र दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जैसे ही हम दरवाजा खोलें और वो कहे कि अरे आप तो बड़े कमजोर और अस्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, वो रात में थोड़ा देर से सोए थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कह के अपन भी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए घंटे भर बाद और फिर किसी मित्र का आना हुआ और वे भी जब यही कहते हैं कि आज तो आपका चेहरा कुछ म्लान सा दिख रहा है, कहीं कोई ऐसा लगता है अस्वस्थ हैं आप, अब थोड़ा मन में आता है कि वो जो सुबह कह रहा था वो भी यही बात कह रहा था, ये घंटे भर बाद, इन लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि तय कर रखा हो, ये तो अलग ही है। तो थोड़ा सा फिर अपना चेहरा दर्पण में देखने का मन हो जाता है कि कहीं सचमुच मैं अस्वस्थ तो नहीं हूं, और फिर जब भोजन की थाली पर बैठते हैं और जरा हड़बड़ी है 10 बजे जल्दी ऑफिस जाने की, तो ठीक से नहीं खाते हैं तो फिर जीवन साथी भी कहती कि आज तो ठीक से नहीं खाया, क्या कुछ अस्वस्थता है क्या? अब तो फिर जो है बिल्कुल लगने लगता है, और ऑफिस में लंच के टाइम में बैठे बैठे फिर वही विचार आ जाता है कि आज तो बहुत थकान सी लग रही है, और उतने में ही अगर कोई ऑफिस का व्यक्ति भी कह देता कि आप तो उतने उत्साहित नहीं लग रहे हैं आज, आज तो आप बहुत ही डल मालूम पड़ रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या घर में कोई? तो शाम जब लौटने लगते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और घर आकर के तो बिस्तर पे ही पड़ जाते हैं, क्या हुआ, किसने क्या कहा? एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थता का विचार अस्वस्थ कर सकता है, और एक अस्वस्थ व्यक्ति को भी अगर निरंतर वह अपने स्वास्थ्य का विचार करे तो वह अपने को स्वस्थ महसूस करके और एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह सारा कार्य कर सकता है। इतना बड़ा काम है इन विचारों का, मैं कहना यह चाह रहा हूं। हम अगर किसी व्यक्ति को कोई अच्छा कार्य करने के लिए और प्रेरित करते हैं, बार बार उसे हम प्रेरित करते हैं, तो वह उस अच्छे कार्य को करने के लिए नहीं सामर्थ होते हुए भी तैयार हो जाता, और यदि हम कोई बहुत सामर्थ्यवान हैं, जैसे कि शल्य को सारथी बना दिया था कर्ण का युद्ध क्षेत्र में, शल्य ने काम क्या किया? शल्य एक ही काम करते थे कि जब जब भी अर्जुन का रथ सामने आता था तो कर्ण का रथ मोड़ने लगते थे। कर्ण कहता था क्यों? अरे तुम क्या लड़ोगे उससे, बाजू में हट जाओ और लोगों से लड़ो, वो आ गया, अर्जुन आ गया। ऐसा बार बार कर्ण को डिकरेज करना, इतना ही काम था उसका कर्ण शल्य का। शल्य के समान ही हमारे अंदर जो कमजोर विचार हैं या हमारे जीवन को कमजोर बनाने वाले विचार हैं, अगर वे ही हमारे भीतर निरंतर चलते रहते हैं तो वे हमें सामर्थ्यवान होते हुए भी कमजोर बना देते हैं। अगर हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो वे हमारी नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स हमारे अपने जीवन को पतन की तरफ भी ले जा सकते हैं। और अगर हम बहुत उत्साह से और बहुत अपने जीवन को अच्छा बनाने के भाव से भरे हुए हैं तो हम भले ही अच्छे ना बन पाए पर हम पतन की तरफ भी नहीं बढ़ सकेंगे। इतना तो हमारे जीवन में उन विचारों के द्वारा हमें लाभ मिल सकता है। आचार्य भगवंतों ने पहला विचार दिया है कि जितने भी संसार में दिखाई पड़ते हैं संयोग, वे सब संयोग क्षणभंगुर हैं। हम अपने जीवन में हमारे संबंधों को देखें, चाहे हम इस संसार में जो भी हमें दिखाई पड़ता है दृश्य जगत, उस दृश्य जगत को देखें, होने वाली घटनाओं को देखें, या हम जो भोग सामग्री हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुई है उसको देखें, सबको देखें अगर गौर से, तो एक ना एक दिन सब अपना अपना समय पूरा करके नष्ट हो जाते हैं। पानी पर खींची हुई लकीर तुरंत नष्ट होती दिखती है, रेत पर खींची हुई लकीर उससे जरा देर से नष्ट होती है, पत्थर पर उकेरी गई रेखा उससे थोड़ी देर से नष्ट होती है, लेकिन होती अवश्य है। यह जो क्षणभंगुरता का विचार है वो हमारे जीवन में निरंतर इस बात के लिए हमें सचेत करता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन संयोगों को ही प्राप्त करने और इनको ही शाश्वत बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ये हमारा भ्रम तो नहीं है, ये सलाह देता है। क्षणभंगुरता का विचार हमें निराश नहीं करता, वरना हम चाहें तो उस क्षणभंगुरता के विचार से कि जब यहां सब नष्ट हो जाना है तो क्या धरा यहां पर चलो, ऐसा नहीं, विड्रॉ करने के लिए नहीं कहता। वह क्षणभंगुरता का विचार हमें सचेत कर देता है क्योंकि हम सुबह से शाम तक उन संयोगों को हासिल करने और उन जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, जिन जिन चीजों का हमें संयोग प्राप्त हुआ है वे हमेशा बनी रहे, इनके ही उद्यम में लगे रहते हैं, इनके ही पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। संयोगों की प्राप्ति नहीं होने पर असफलता का विचार और संयोगों की प्राप्ति हो जाने पर वे नष्ट हो जाते हैं, तो उनके नष्ट हो जाने पर जो एक पीड़ा का एहसास और नष्ट ना हो जाए इस तरह की दुश्चिंता, ये सब कितने थोड़े से भ्रम की वजह से उत्पन्न हुए, क्योंकि मैंने संयोगों को शाश्वत मान लिया है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संयोग क्षणभंगुर हैं, उनको शाश्वत मान करके और हम एक भ्रम उत्पन्न करते हैं जिससे दुश्चिंताएं, दुख, निराशा, ये सब हमारे जीवन में आती हैं। हम सचेत रहें, हमने तो अपने आप को भी ऐसा मान लिया जैसे कि हमने मृत्यु को जीत लिया हो, हमें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, जबकि मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु की अनिवार्यता हमें इस बात के लिए सचेत कर दे कि इससे पहले कि मरण हो मुझे वो सब काम कर लेना है जिनको कि मैंने करने का तय किया है। और मृत्यु का वो क्षण किसी भी समय उपस्थित हो सकता है, इसलिए मुझे अभी कर लेना, मुझे कोई भी काम अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम, कम से कम एक काम तो जो अपने जीवन को अच्छा बनाने का है वो कल पर नहीं डालना है, क्योंकि कल मेरे जीवन में कब आ जाएगा कल कहा नहीं जा सकता। कहते जरूर हैं कि कल कभी नहीं आता, लेकिन कल किसी भी क्षण आ सकता है, वर्तमान के अलावा अगला क्षण कल ही है। वह अगला क्षण किसी भी समय हमारे जीवन को पूरा का पूरा समाप्त कर सकता है, इसलिए हम सावधान रहें। दो चीजें मिल गई, क्षणभंगुरता हमें सचेत करे, हमारे भ्रम को तोड़े, हमें सावधान करे। हमारी मृत्यु अनिवार्य है इस तरह के एहसास से हमें भर दे ताकि हम अपने कार्यों को व्यवस्थित और सुनिश्चित समय पर ठीक ठीक ढंग से कर सकें। हम लापरवाही में जीवन न जिए, ये क्षणभंगुरता हमें सिखाती है। एक व्यक्ति चला जाता था, कार एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ पैर सब टूट फूट गए, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई, सब टूट फूट गया, आंखें भर खुली दिखाई पड़ती हैं, बाकी तो नाक पर भी पट्टी लगी है, होंठ पर भी पट्टी चिपकी है, बाकी सब में तो पट्टी लगी हुई है, दिखती हैं तो सिर्फ आंखें, बाकी सब में तो पट्टी ही बंधी दिखती है। एक बहुत पुराना मित्र, उसे मालूम पड़ा कि मेरे मित्र को ऐसी मुश्किल आ गई है। मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि अब क्या पूछे, कैसे हो ये भी नहीं पूछ सकते, और सामने दिख रहा है। तब भी उसने अब बस अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए कहा कि ऐसी स्थिति में बहुत पीड़ा तो होती होगी, अब क्या पूछे, और पीड़ा तो होती होगी। तो उसने कहा कि हां, जब मुस्कुराने की कोशिश करता हूं तो पीड़ा होती है। अरे, उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ऐसी स्थिति में मुस्कुरा लेते हो? बोले, अगर ऐसी स्थिति में नहीं मुस्कुराऊं तो जीवन भर का मुस्कुराना व्यर्थ हो गया, अब तो और मुश्किल हो गई। बड़ी फिलॉसफी की बात कर रहा है। मित्र ने कहा कि समझ में नहीं आया। उसने कहा, मेरे भी जिंदगी भर समझ में नहीं आया, वो तो अब आया समझ में, ये और मुश्किल हो गई। उसने कहा, कुछ तो कहो, कुछ कहते नहीं। उसने कहा, बहुत स्पष्ट सी चीज है, आज तक मैं इस भ्रम में था कि जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा, लेकिन ये तो पूरा टूट फूट गया, मैं तो फिर भी ठीक हूं। अब समझ में आया मुझे कि इसके टूट जाने से मैं नहीं टूटता हूं, मैं तो फिर भी बना रहता हूं। इस क्षणभंगुर संयोगों के बीच में मैं अपनी शाश्वतता को भूल चुका था। अब मुझे मालूम पड़ा कि ये संयोग भले ही क्षणभंगुर है, लेकिन मैं इन संयोगों के बीच भी शाश्वत हूं, और मुझे अपनी उस आत्मा की शाश्वतता का विचार करना चाहिए। क्षणभंगुर चीजों को शाश्वत बनाने का भ्रम नहीं करना चाहिए। इतनी सी चीज है, यह सलाह हमें अनित्य अनुप्रेक्षा देती है। मृत्यु के लिए मैं हर क्षण तैयार हूं, और अपनी ही नहीं, हर चीज की। यह कागज धीरे धीरे करके मृत्यु की तरफ जा रहा है, इसकी मृत्यु मुझे एक साथ दिखाई पड़ेगी, जिस दिन मैं इसे उठाऊंगा और ये टूट फूट कर वहीं गिर जाएगा, इतना जीर्ण हो जाएगा। इसकी भी अपनी एक एज है, इसका भी अपना लाइफ स्पॉन है, इसका भी जीवन चक्र है, लेकिन यह जीवन चक्र हमारी दृष्टि में आता नहीं है। अगर हमें अपने और आसपास के सब चीजों के जीवन के बारे में, उनके अपने निरंतर नष्ट होने के बारे में एहसास होना शुरू हो जाए, नष्ट हो जाएंगी ये मालूम तो है, लेकिन अनुभूति, जैसे ही मैं नए कपड़े खरीद करके लाऊं और अपने शरीर पर धारण करके प्रसन्न हो, उसी क्षण मेरे मन में ये विचार आ जावे कि एक दिन ये भी पुराने हो जाएंगे, तब मैं निराश ना हो, बल्कि प्रसन्न हो कि जब तक ये पुराने नहीं हुए हैं तब तक तो मैं इनका आनंद ले सकता हूं। ये चीज प्रतिशण नष्ट होती हुई चीज में से नव निर्माण की कोई चीज निकाल लेना, ये अनित्य अनुपेक्षा सिखाती है। हर चीज नष्ट हो रही है, इसलिए मैं आप कोई भी चीज नई ना बनाऊं, मैं अपना पुनः नव निर्माण ना करूं, क्योंकि एक दिन मुझे नष्ट हो जाना है। नहीं, ये तो नेगेटिव थॉट है, ये अनित्य अनुप्रेक्षा की सलाह नहीं है। क्षणभंगुर है सब कुछ, इसलिए मैं उस क्षणभंगुर के बीच ऐसा नव निर्माण कर लूं अपनी ही चेतना का, जो कि शाश्वत है। यह विचार हमारे अपने जीवन को संभालने वाला है। जो वन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, इसका अर्थ भी अपन सबको आता है, लेकिन जब कांच का सामान खरीद के लाए थे, सजा करके रखा था, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्टूल रख करके उसने उसे पा लिया है, हम दूर बैठे देख रहे हैं और जैसे उसका हाथ कांच के सामान पर पहुंचता है हमारे भीतर कुछ टूटने लगता है। कांच का सामान अभी नहीं टूटा, उसके पहले हमारे भीतर कुछ टूटने लगता है और हम चिल्ला पड़ते हैं कि देखो वो उठा लिया उसने और अब पटक देगा, और पटक ही देता है और गिर जाता है। फिर हम उस सामान को लेकर दुखी होते हैं जबकि खरीदते समय ये तय था कि कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, वरना वो कांच क्या, पत्थर हो गया फिर तो ना टूटे। तो इतना जानते हुए भी जब वह सामान टूटता है तब मेरे मन में सहसा हंसी नहीं आती, जबकि बच्चा अगर गुब्बारे से खेल रहा हो और अचानक उसका गुब्बारा फूट जाए तो हम ताली बजाने को कहते उससे कि ताली बजाओ मजा आ गया, जितनी देर था उतनी देर तो आनंद लिया और अब जरा फूटने का भी आनंद लो, क्योंकि वो तो पक्का था कि फूटे गई। और किसी दिन अपने मकान की पीछे की जरा सी दीवार खिसक जाए और अपन निराश कमरे में बैठे हो और बेटा आकर के कहे कि क्या हुआ आपको, तो हम कहें कुछ भी नहीं, पूछो मत क्या हुआ, और वो धीरे से कहे कि क्या आपका भी गुब्बारा फूट गया क्या। अब ना हंस पाएंगे, जैसा कि हम उसको कह रहे थे कि तुम्हारा गुब्बारा फूट गया दूसरा दिला दूंगा, वो तो फूटने के लिए ही था, ऐसा ही वो हमें भी कह रहा है कि इन छोटी छोटी सी जो संयोग प्राप्त हुए थे उनमें जैसे ही वो वियोग को प्राप्त होते हैं हम कितने व्यथित हो जाते हैं। हम दूसरे को भले ही समझाते हैं, एक बाबा जी थे वो हमेशा लोगों को समझाते थे, बाबा जी वगैरह का काम ही रहता जैसे कि हम समझाते रहते हैं, हम भले ही उतना समझते नहीं हो, हाँ हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब समझ जो समझाने वाला है वो सब समझता ही हो, ये अहंकार व्यर्थ है। तो बाबा जी हमेशा कोई भी उनके पास पहुंच जाता था दुख सुख में बीमारी में, तो दुख विपत्ति आने पर पहुंचता था तो बाबा जी धैर्य बनाते थे कि देखो भाई संसार ऐसा ही है, इसमें दे देते थे तो बड़ा प्रसन्न हो जाता था वो कि चलो, और खुश होकर के लौट आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा जी की झोपड़ी के पास से निकल रहा था तो झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज आई। उसने कहा यहां बाबा जी के पास में कौन रो रहा होगा, कोई होगा विपत्ति का मारा वो शायद रो रहा होगा, तो जरा देखें कौन है। देखा तो वहां कोई नहीं, और अंदर जाकर के देखा तो बाबा जी की ही आवाज थी ये तो रोने की। अरे बाबा जी को क्या हो गया। अब बाबा जी को पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा जी तो बताने ही तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल में जब उसने कहा कि बाबा जी हमें तो कुछ बताओ, थोड़ा आपका दुख हल्का हो जाएगा, तो रोते रोते बाबा जी ने कहा कि देखो तो कितने मुश्किल से तो किसी ने मुझे दूध के लिए एक बकरी दी थी और आज रात में वो बकरी नहीं रही, अब क्या होगा। अब बड़ी मुश्किल में पड़ा वो कि अरे ये बाबा जी जब हमारे साथ कोई घटना घटती थी तब तो ये समझा देते थे, आज इनको समझ को क्या हुआ। कहा नहीं उसने बाबा जी से, नहीं तो वो तो सम्मानजनक नहीं है ये बात कहना उनके लिए। तो सिर्फ उसने यही कहा कि बाबा जी आप तो स्वयं इतने ज्ञानवान हैं, जानकार हैं, आप तो हम लोगों को समझाते हैं, ये तो हम अज्ञानी लोग हैं जो नहीं समझते हैं, पर आप तो सब समझते हैं, आप स्वयं ही धैर्य धारण करें। तो बाबा जी क्या बोले, कहने भैया बात तो सब समझावे की बात है, मनो जब जोन पे बीता थे वो ही जाना था। आया समझ में, समझने समझाने की बात अलग है लेकिन जब अपने जीवन पर घटित होती तब वो समझ हमारी काम आ जावे तो वो समझ सार्थक, और कुछ नहीं। इतना ही करना है हमें, अपनी उस समझ को अपने उन विचारों को इतना सुदृढ़ बना लेना है कि जब हमारे साथ कोई स्थिति आए तो किसी और से हमें विचार उधार न लेना पड़े, वे हमारे पास जो विचार हैं वे ही हमारे लिए समाधान दे सकें, वे हमारे काम आ सकें, हमें धैर्य दे सकें और हमें विपत्ति से के बीच में भी, और ठीक है हम अपने जीवन को आगे जिएंगे और कुछ जो अच्छा होगा वो हम प्राप्त करेंगे। हमने कुछ खो दिया है इसको लेकर के हम बैठ जाएं तो जो पाना हमें चाहिए वो हम कभी नहीं पा पाएंगे। खोना और पाना संसार में हमेशा लगा हुआ ही है, ऐसा मान करके बहुत पहले इतनी सी ही बात, और बहुत बड़े पंडित जी बनारस के जिनको की जिनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न कर गई थी इसलिए आपको कह रहा हूं, इतनी छोटी सी बात श्रद्धा उत्पन्न कर सकती है। कटनी वाले पंडित जी ने आचार्य महाराज के सन 1968 में दीक्षा के उपरांत जब युवा ही थे, 23 वर्ष की उम्र में आचार्य महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में बैठे हुए और कभी कभी प्रवचन करते थे, उनके प्रवचन से प्रभावित होकर के और बनारस के पंडित जी को बुलाया था कि आओ तो देखो तो, क्योंकि वे पंडित जी ये मानते थे कि अब वर्तमान में कोई मुनि नहीं हो सकता, ऐसी उनकी धारणा थी 1978 और सॉरी 1968 में 68। उनको बुलाया कि आकर के देखो तो, प्रणाम मत करना कोई बात नहीं, पर देखने में क्या हर्ज है, सुनने में क्या हर्ज है। आए वो, सुना, एक दिन के लिए आए थे, 6 दिन रुके और अध्यात्म की चर्चा तो कोई मुनि नहीं करते हैं ये उनके मन में था। वो आचार्य महाराज से अध्यात्म की उनके मुख से चर्चा सुन करके अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था, सो जाते समय कहा कि महाराज आया तो एक दिन के लिए था और आज जाने का मन है, जा रहा हूं। आचार्य श्री ने आशीर्वाद देते हुए इतना ही कहा कि ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है। इतनी सी बात सुनकर के उनके भीतर उन्होंने जाकर के सबसे पहले जैन गजट में एक उदित होते नक्ष एक नक्षत्र का एक दैदीपमान या ज्योतिर्मयमान नक्षत्र का उदय, ऐसा करके आचार्य श्री के बारे में लिखा और अंत में लिखा कि मैं जब नमो लोए सब साहूनम कहता था तो कोई मेरे सामने छवि नहीं आती थी, अब जब नमो लोए सब साहूनम कहता हूं तो आचार्य महाराज की छवि कि आज भी मुनि महाराज हैं ये आ जाती। एक छोटा सा विचार मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे भीतर इस तरह के विचार ये क्षणभंगुरता का विचार कि आना जाना लगा हुआ है, लगा हुआ है यानी कंटिन्यूटी है, आना और जाना उत्पाद वे द्रव युक्तम सत, यहां हर वस्तु अगर उत्पन्न होती है तो नष्ट भी होगी लेकिन इसके बाद भी वह शाश्वत है, ये अगर हमारे भीतर विचार निरंतर बना रहे तो यह विचार हमारे जीवन को सजग सावधान और भ्रम से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है और जीवन को समय रहते अच्छा बनाने की प्रेरणा देता रहता है। इसी भावना के साथ कि हम इस विचार की प्रक्रिया से निरंतर लाभ ले सकें, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ी,
आ
गुरु वैर प्रणा मिथ्या तमन ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु सेवकानी है अनुभवताय वेखो जीवों के जगाए वेखो काहू न सताए वेखो भव्योर आनी है जामानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो